जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमोनतीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे काया राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 Giridhari Radha, Giridhari Radha. Jai Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Hari bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद दस अध्याय का ग्यारह श्लोक संख्या छह उलूखलम् विकर्षन्तम् दाम्ना बद्धम् स्वात्मजम् विलोक्य नन्दः प्रहसत्वदनः विमोमोचः उलूखलं विकर्षन्तम् उलूखलं विकर्षन्तम् दाम्ना बद्धं स्वात्मजम् दाम्ना बद्धं स्वात्मजम् विलोक्यनन्दः प्रहर्षाद् वदनो विमुमोचः वदनो विमुमोचः उलूखलं उलूखलं विकर्षन्तम् పులూకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వమాత్మజం తామ్నాబద్ధం స్వమాత్మజం. పులూకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వమాత్మజం లోకానందాప్రహసత్ మదనం విమోచః. పులూకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం ప్రహర్ష పదనో విమోచఃఫలం వికర్షంతం ఆమ్నాబద్ధం స్వాత్మజం ప్రహర్ష లోకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం పదనా విమోచః. లోకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం లోక్యానందాప్రహర్షత్ పదనో విమోచః. పులూకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం లోక్యానందాప్రహర్షత్ మదనా విమోచః. పులూకలం వికర్షంతం తామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం లోక్యానందాప్రహర్షత్ మదనో విమోచః. పులూకలం వికర్షంతం దామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం లోక్యానందాప్రహర్షత్ పులూకలం వికర్షంతం నామ్నాబద్ధం స్వాత్మజం విలోక్యనందాప్రహర్షత్ మదనో విమోచః. పులూకలం వికర్షంతం నామ్నాబద్ధం స్వమాత్మజం విలోక్యనందాప్రహర్షత్ మదనా విమోచః. शब्दार्थ इस प्रकार है, उलूकलम ओक ओक ओखली को विकर्षंतम खींचते हुए दामना रस्सी से बदनम बद्धम बंधा हुआ स्वात्मजम अपने पुत्र कृष्ण को विलोक्य देखकर नंदह नंद महाराज प्रहसत्वदनः इस अद्भुत बालक को देखकर मुस्कुराते चेहरे से विमुमोचः उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अनुवाद और तात्पर्य जवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत का स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुवाद है। अब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखल से बांधा और ओखल को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्हें कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। तात्पर्य नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्यारे बेटे को इस तरह से बांधा हो। कृष्ण तो उसे प्रेम या आनंद प्रदान करता है, तो फिर वह इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उन्होंने लकड़ी की ओखल से बांध दिया। इस प्रेम व्यवहार को समझकर नंद हंस पड़े और उन्होंने कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्म के बंधन से उसी तरह सकाम कर्म से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। यही उसकी लीला है। ओम ज्ञातुरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुं नैश्चमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणदलिता शिवशाकान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी दामबंधन लीला समाप्त होने आ रहा है। किस प्रकार नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को मुक्त किया उसका वर्णन है। जिनको मुक्ति पदे कहा जाता है उनको ही नंद महाराज ने मुक्त किया, इससे समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा उनका सौभाग्य है या कितना महान स्थान है नंद महाराज का। तो कृष्ण को ही मुक्त किया, जो सारा जगत को मुक्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं उनको ही मुक्त कर दिया। ये प्रसंग ऐसा है कि जैसे नंद महाराज उपनंद इत्यादि सब लोग पहुंचे, जोर से ऐसा भयानक सा आवाज आया, सब लोग पहुंचे, देख के आश्चर्यचकित हो गए, क्या कृष्ण ने किया है क्या? अगर वो नहीं किया है तो कौन किया है? ऐसे तो हवा तो आंधी तूफान तो था नहीं, इतना बड़ा वृक्ष कैसे गिर पड़ा? तो आश्चर्य का वर्णन हमने पिछले श्लोकों में कहा।
और जैसे ये आश्चर्यचकित हो गए थे, वो बच्चे समझ गए कि ये आश्चर्य में है, हम सच बताएंगे। जाके सब बच्चे जाके नंद महाराज को कहने लगे, नहीं कृष्ण ने किया, वो घसीटते हुए लेके आया, दोनों पेड़ के बीच में लगा के उन्होंने गिराया है। नंद महाराज वैसे पहले से थोड़ा सांसी था उनके मन में, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा थोड़ी ना कर पाएगा, ये ऐसे गिर गया हो कोई कारण से ऐसा, उनका प्रेम वश वो ये स्वीकार भी नहीं किए, सोच भी नहीं सकते कृष्ण ने उन वृक्षों को गिराया। ये वात्सल्य प्रेम का महिमा है। पिछले बार या कुछ दिन के पहले, तीन चार दिन पहले के प्रवचन में इस बात को कहा था कि ऐश्वर्य शक्ति हमेशा वात्सल्य का परीक्षा, नंद महाराज यशोदा मैं की वात्सल्य का परीक्षा लेने के लिए आती है और हमेशा हार के चली जाती है। दूसरे शब्दों में गोकुल में भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, केवल भगवान की मधुरिमा या वात्सल्य रस का प्रचार करने के लिए है, उनकी महिमा को स्थापना करने मात्र के लिए है। इस बात को हमने सीखा। अभी जैसे नंद महाराज ने देखा किसको, किस कृष्ण को देखा, किस रूप में देखा हो ना, उलूकलम विकर्षंतम, वैसे कृष्ण अभी नंद महाराज को देख के थोड़ा सा शर्मा भी रहे थे। तो एक जगह आचार्यगण ने कहते थोड़ा शर्माते हुए बच्चा थोड़ा सा दूर जा रहे थे नंद महाराज से। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने विकर्षंतम अभी वो कल को उधर खड़े रहे, फिर वृक्ष गिरने के बाद दोनों नलकुए मन गिरे जाने के बाद वो थोड़ा सा नंद महाराज थोड़ा दूर जाना चाहते थे, नहीं मैंने नहीं किया ये सब चीजें, ऐसा थोड़ा शर्मा रहे थे। क्योंकि कोई बच्चा बड़ा काम करता है, पिताजी आ जाते तो सब शांत हो जाता है, एक ही नहीं तो वो शर्माते थोड़ा सा घसीट रहे थे वो कल को। तो उलू कलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वमात्मजम, नंद महाराज उनके आत्मजम उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, उनके पुत्र को देख के क्या कैसे देखा उन्होंने, उलूकलम विकर्षंतम, उलूकल को वो खींच रहे हैं और धामना बद्धम उनके पेट से बंधा हुआ है। तब उस समय नंद महाराज ये विमोहित हो गए, इसको कौन बांधा है। नंद महाराज को किसी ने कहा यशोदा ने बांधा है। अच्छा अच्छा यशोदा, ये सुन के सोच के नंद महाराज सोचने लगे, ये जो है कृष्ण, जब हम नंद दोनों बैठे रहते हैं, यशोदा के साथ में बैठा रहता हूं, उस समय कृष्ण आते हैं तो सीधा यशोदा के गोद में बैठते हैं, मेरे गोद में आके नहीं बैठते हैं। यानी असिद्ध में कृष्ण का प्रेम यशोदा से ज्यादा है, लेकिन फिर भी यशोदा इतना कठोर हो कि उनको बांध के रख दिया, उतना क्रोध है। यह अस्तित्व में मां और बच्चे के बीच में हुआ है, उसके बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। खास करके जब पुत्र होता है, पुत्री के विषय तो दूसरी बात है, पुत्र होता है जब माँ पुत्र को डांटती है या उनको मारती है, पिताजी को भी बीच में नहीं आना चाहिए। अगर पिताजी बीच में आएगा ना, वो पुत्र बोल देता है तुम जाओ, ये मैं हम दोनों के बीच में ये बात है, गेट आउट ऑफ हियर। क्योंकि माँ से स्वाभाविक प्रेम इतना रहता है पुत्र का कि अगर माँ कितना भी मारती है डांटती है कुछ भी करे, अगर कोई बीच में आके माँ को डांटने लगे, पुत्र को बिल्कुल अच्छा ही लगता है। वो बोलता है, किसी को भी बोल देता है तुम चुप रहो, तुम्हारे हमारे प्रेम का व्यवहार है, हम माँ से इतना प्रेम का तो डांटे पटकारे कुछ भी करे, वो मेरी माँ है तुम बीच में मत आना। पिताजी को भी बोल सकता है, इतना वो माँ और बच्चे के बीच में प्रेम रहता है। अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण अभी नंद महाराज ये स्मरण कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं, यशोदा का वात्सल्य का स्मरण कर रहे हैं। यशोदा का वात्सल्य का स्मरण करते हैं श्री कृष्णा जी ठाकुर कहते हैं, नंद महाराज सोच रहे हैं कि यदि ये बच्चा मैं भी बैठा रहा तो मेरे गोद में भी नहीं बैठता है, वो जाके सीधा यशोदा के गोद में बैठता है और ऐसी प्रेम तगाद प्रेम उनसे है, मैं तो कृष्ण को कभी नहीं डा, आज तक नंद महाराज ने कृष्ण को कभी नहीं डांटा या कभी डांटने का हिम्मत भी नहीं कर सकते। नंद महाराज सब सोच रहे हैं, अभी ये कृष्ण को डांटने का हिम्मत जो है केवल यशोदा का है। और इतना ही नहीं, आज तो हद कर दिया, डांटने की बात छोड़ो, बच्चा चंचल रहता है स्वभाव, बच्चे का स्वभाव है चंचलपन, उसको बांधना जो है सबसे कठोर दंड है। बच्चे को मारो पीटो बच्चा सहन कर ले, बांध के रखना ये जो बिल्कुल सहन नहीं कर पाए बच्चा, क्योंकि उनके अंदर चंचलपन रहता है। ये बच्चे के पास बच्चा जब भी मार खाता है डांट खाता है वो खुश हो जाता है, चलो कम से कम बंधन तो नहीं हुआ। कहीं बांध के तो नहीं रखा। इसलिए बचपन में जब भी वैसे परंपरा में जब कोई मार कर खाने पर भी बच्चा सुनता नहीं बात, उनको माँ डांटती है, बोलती घबराती है, बोलती है उनको उनको भय उत्पन्न कराती है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे कमरे में बंद कर दूंगी। तब तो वो बच्चा एकदम सीधा हो जाता है, या लाश लाश हत्या रहे, कमरे में बंद करना मतलब उसको सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चंचलपन रहता है जिसके अंदर, उसको बांध के रखना बहुत बड़ी सजा है। उसको बोलो चुपचाप बैठो, वो समझते वो इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ा अगर कोई सजा बच्चे को अगर कुछ है तो उसको बोलना चुपचाप बैठो, उसको बांध के रखना, वो उससे बड़ा डर रहता है। मार खा जाएगा थोड़ा धूल करके हंसते हुए चले जाएगा, नो प्रॉब्लम। डांट खा जाएगा बाद में थोड़ी देर के हंस जाएगा, हंसेगा। लेकिन यशोदा ने सबसे बड़ा जो दंड है वो बच्चे को जो देने वाले दंडों की श्रृंखला में सबसे बड़ा जो दंड है वो बांध के रखना, वो यशोदा ने दिया। अभी नंद महाराज सोचने लगे कि ये इतना प्रेम करता है यशोदा से, पता नहीं यशोदा को कितना इसके प्रति गुस्सा है, इतना गुस्सा इसलिए उन्होंने बांधा, कुछ तो गड़बड़ किया होगा कृष्ण ने, इसलिए किया है। तो नंद महाराज भी यशोदा को प्रेम का स्मरण कर रहे हैं, करके वो हंस रहे हैं। बाद में ये जो दृश्य को देख के, यानी ये कृष्ण को बंधन में देखते, नंद महाराज स्मरण करते यशोदा का वात्सल्य की जो महिमा है, यशोदा का प्रेम की महिमा है, उसका स्मरण करते हुए नंद महाराज विलोक्य नंदहा ये देखते हुए कृष्ण को देख रहे हैं और यशोदा का वात्सल्य का महिमा को स्मरण करते हैं। कितना महान है यशोदा और कृष्ण का बीच में प्रेम, यशोदा ने कृष्ण को बांधा है, ये ऐसा स्मरण करते हुए वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे और कैसे हंसने लगे उसका वर्णन हम थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं। ये जो हंसना जो है अद्भुत रस का एक व्यभिचारी रस माना जाता है। अद्भुत रस का अनुभव होता है जब अद्भुतता का एहसास होता है, अच्छा इसके वजह से हुआ, अच्छा अच्छा ऐसा करके तुरंत मन में एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। वो शांति उत्पन्न होने के बाद हंसी उत्पन्न होती है। ये जो व्यभिचारी भाव ऐसी भाव है जब आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाती हैं। तो अद्भुत रस अगर इस प्रसंग में स्थायी भाव अद्भुत है तो ये जो हास्य जो है व्यभिचारी भाव माना जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हमने विश्लेषण करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इधर नंद महाराज को हंसी आई, ही स्टार्टेड लाफिंग। क्यों हंसे, व्हाई लाफ्ड, ये कृष्ण यशोदा से इतना प्रेम करता है, प्रेम करने के बाद भी यशोदा इतना डांटती है उसको, ये विषय जो है मैं नहीं समझ सकता, मेरी समझ के परे है, चलो मैं कृष्ण को बंधन से खोल देता हूं, इतना तो कर दो कम से कम बच्चे को। यशोदा को जाके डांटना ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं इतना तक कर सकता हूं ठीक है, यशोदा को कृष्ण को बंधन से निकाल दूंगा। अगर मान लो अगर यशोदा आके बोलने लगी तुमने क्यों खोला, अब उसका भी डर था। अभी नंद महाराज भी यशोदा से डरते, वैसे तो हर पति तो डरता ही पत्नी से, लेकिन फिर भी बच्चे के विषय में अगर कुछ इंटरफियर किया जाए वो और ज्यादा है। तो माँ बोलने लगती मेरा बच्चा है, मैं जो चार्ज कर सकती हूँ, तुम कौन होते, जाओ गेट आउट बोल सकती है, इतना हिम्मत रखती है माँ। खास करके जो पुत्र होता है, पुत्री के विषय में जो है पिता का ज्यादा स्नेह रहता है पुत्री के प्रति, लेकिन पुत्र के प्रति ज्यादा स्नेह जो है वो माँ का रहता है। तो नंद महाराज के मन में बहुत सारे बातें चल रही थी, ये सब बातों को स्मरण करते वो हंसने लगे। तो ये जो हंसी जो है इसका रखा गया है प्रहर्षाद वदनो विमुच्छा। वैसे तो प्रहर्षाद के विषय में हम चर्चा करने से पहले थोड़ा सा विमोचहा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ा आश्चर्य की बात है, भगवान की लीलाओं में जो भाग लेते हैं उनका ही आश्चर्य अद्भुत रस को आस्वादन करना ही नहीं, बल्कि जो सुनते हैं उनको भी वही रस का आस्वादन होता है। अभी देखिए भगवान जो सारे जगत के लोगों को मुक्त कराने वाले, जिनको मुक्ति पदे कहा गया है, जिनकी चरण कमलों की प्राप्ति ही मुक्ति है, और जिनको बड़े बड़े मुक्तानाम सिद्धाना मुक्ति प्राप्त करने वाले उनकी उनकी आराधना करते हैं, वैसे भगवान को मुक्त किया नंद महाराज ने। अभी उनका महिमा देखिए, ये भी आश्चर्य की बात है। ये लीला को श्रवण करने वाले भी आश्चर्य रस को अनुभव करते हैं। तो ये भगवान की लीला की महिमा है। लीला की महिमा ऐसा है जो भाग लेते हैं, जो रस को आस्वादन करते हैं वो वही रस का आस्वादन जो सुनते हैं वो भी आस्वादन कर सकते हैं। अभी अगर कहा जाए इसमें अद्भुतता भी है, हास्य भी है। अगर कहा जाए जो जेल का मालिक है उसी को बंधन में डाल दिया, और वो जेल में जो व्यक्ति है उसी ने उसको मुक्त कर दिया, वो कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा। तो नंद महाराज वो भगवान श्री कृष्ण को मुक्त किया, अपने बंधन से मुक्त किया। अभी ऐसे देखा जाए पिछले श्लोकों में कृष्ण स्वयं सोच रहे थे, अभी ये लोग जाके मुझे प्रणाम कर रहे हैं नंद कुएर मणिग्रीव, वो बोल रहे हैं कि आपने हमको मुक्त किया, बहुत धन्यवाद, मैं तो स्वयं बंधा हुआ हूं। बंधा हुआ व्यक्ति कैसे दूसरे को बंधन से खोल सकता है? तो ये बड़ा रसमय बातें हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है रसमालेम है, रसों से भरा हुआ है। लेकिन इन रसों से भरा हुआ जो भागवतम है उसका आस्वादन करना है तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ता है। एक है हमारी भक्ति, हमारे हृदय में भक्ति। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का वर्णन किया है या उनको रचना किया है। तो श्रीमद् भागवतम में और भक्ति रसामृत सिंधु में अंतर क्या है या क्या संबंध है? अंतर तो है नहीं, लेकिन संबंध का विषय चर्चा करेंगे। संबंध यह है, श्रीमद् भागवतम के अंदर जो रस है उसको आस्वादन करना है तो हमारी योग्यता की आवश्यकता है। क्या है वो योग्यता? वो भक्ति एकमात्र योग्यता है जिसके द्वारा हम भागवतम के जो अंदर रस को आस्वादन कर सके। जितना व्यक्ति भक्त या भक्ति करता है उतना वो भागवत के रस को आस्वादन कर सकता है, नहीं तो ये भागवत का रस जो है वो उसका आस्वादन नहीं हो पाएगा। वो सोचेंगे ये क्या है, ये तो कुछ बच्चों वाली ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज है, उसमें क्या रखा हुआ है, या सुनने में इतना आनंद का अनुभव नहीं होगा। भले ही ये छोटी सी बात है, भले ही देखेंगे साधारण से बच्चे का कार्य है, लेकिन इतने इतने कालों से, हजारों हजारों काल वर्षों से अनेकों अनेकों विद्वान लोग इसको चर्चा है करते हैं, आनंद लेते हैं और घंटों बिता देते हैं इस लीला की चर्चा में। इसमें रखा क्या है? कुछ लोग सोच सकते हैं, कौन है वैसे लोग जो सोचते हैं उसके हृदय में कोई रस नहीं है। तो इसलिए अगर ये भागवत का रस को आस्वादन करना है तो क्या करना होगा? उसके लिए आचार्यों ने क्या किया, हमको ये भक्ति रसामृत सिंधु प्रदान किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में जो नियम कानून बताए गए हैं भक्ति के, उसको जितना निष्ठा के साथ हम पालन करेंगे उतना हमारे हृदय में भक्ति का वर्धन होगा, जितना भक्ति का वर्धन होगा उतना भागवत का रस को आस्वादन कर सकते हैं। जब भागवत का रस को आस्वादन करते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु में और एक बात बताया गया है, तो भगवान अनंत होने की वजह से उनका जो प्रत्येक व्यवहार है, प्रत्येक कार्य है, प्रत्येक लीला है अलग अलग भक्तों के साथ, उसके अंदर विशेषता रहती है। वो क्या विशेषता है उसका भी श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। अनेक अनेक रसों का जो विशेषता है उसका वर्णन उन्होंने किया है। वैसे कहा गया है, वास्तव अत्र वस्तु सुविधम तापत्रियोन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम का विषय क्या है? वास्तवम है। तो वास्तव के ऊपर व्याख्या करते हुए एक आचार्य कहते हैं कि हमारा भगवान के साथ तो संबंध क्या है, दास का संबंध है, हम भगवान के दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन ये दासत्व जो है कितने वैरायटी है उसके अंदर, शांत दास, साक्षी वात्सल्य माधुर्य, और उसके अंदर भी ये सात प्रकार के गौण रस जैसे हास्य अद्भुत विभत्स रौद्र इत्यादि सात रस, उसके अंदर भी जो स्थायी विचारी भाव विभव अनुभव अनेकों अनेकों प्रकार के जो वैरायटी है उसका जो रस टेक्नोलॉजी है उसका वर्णन जो है श्री रूप गोस्वामी और भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो रसों का गणना वर्णन हुआ है उसके अनुसार अगर भागवत पढ़ा जाए तो भागवत का जो आस्वादन और अच्छी तरीके से हो सकता है। जैसे हम कुछ दिन के पहले अद्भुत रस का वर्णन करते हुए विश्लेषण किए थे, किस प्रकार के दो प्रकार के अद्भुत रस का होता है, एक है साक्षात, दूसरा है जो गौण, यानी जो दूसरा व्यक्ति जो भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं सुन के अद्भुत रस को आस्वादन करना, दूसरा है सीधा भगवान के ऐश्वर्य को देख के उनका विशेषता को देख के अद्भुत रस को आस्वादन करना। वैसे अद्भुत रस का आस्वादन हमने या उसका चर्चा हमने किया था। तो इस शब्द में, इस श्लोक में नंद महाराज ने हंसा, नंद महाराज के मुख में हंसी आई, तो इसलिए हमने सोचा कि आज थोड़ा सा भक्ति रसामृत सिंधु के जो हास्य रस है उसका वर्णन हम थोड़ा सा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो हास्य रस का वर्णन उत्तर दिशा के जो नॉर्दर्न वेव है नॉर्दर्न ओशन है। अगर कोई भक्ति रसामृत एक भक्ति का एक अगर द्वीप के रूप में माना जाए, राधा कृष्ण की लीलाएं, भगवान की लीलाएं, ये चारों बाजों में भक्ति का रस भरा हुआ है। जो भक्ति का रस का उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न वेव है, उसके अंदर नौ अध्याय है, नौ वेव्स है, उत्तरी दिशा में नौ लहर है। उनमें से जो पहला लहर है वो हास्य रस का वर्णन है। वैसे तो ये जो उत्तरी दिशा का जो लहरें हैं, समुन्दर है, सिंधु है, भक्ति का सिंधु है, उसके अंदर नौ लहर है। उसमें सात तो सात गौण रस का वर्णन है, हास्य, अद्भुत इत्यादि, और आठवां अध्याय आठवां लहर है, अलग अलग प्रकार की जो रसों का मिश्रण का वर्णन है, और नौवां अध्याय रसाभास का वर्णन है। रसाभास का अर्थ यह है कि जो मान लीजिए किसी ने अपनी कथा में उठपटान से किसी ने कह दिया राधा कृष्ण लीला कर रहे थे, यशोदामयी देख के उसको आनंद ले रही थी, ये रसाभास माना जाता है। तो इस प्रकार की जो रसाभास है उसका भी वर्णन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पास आखिरी अध्याय है उसका रसाभास। क्यों? क्योंकि जो लोग योग्यता के बिना जो रसमय लीलाओं को वर्णन करना चाहते, जो सुनना चाहते हैं, वो निश्चित रूप में वो रसाभास का अनुभव करते हैं। उनके अंदर वास्तविक रस नहीं है, वो कुछ काल्पनिक चीजें हैं। तो काल्पनिक चीजें भले ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्यों ना हो, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। किसी ने कहा मैं सपने में वो देखा ये देखा, जब तक बद्ध है जीव, सपने में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए रूप गोस्वामी पास भविष्य में लोग इस राधा कृष्ण लीलाओं को बहुत सस्ता कर देंगे, इस भय से उन्होंने ये रसाभास का वर्णन ने किया। क्योंकि इस प्रकार मनगढ़ंत कुछ कहानी कह देंगे और जिसके अंदर रसाभास होगा। तो ये पहला अध्याय जो उत्तरी दिशा का, उत्तरी नॉर्दर्न ओशन का, उसमें लाफिंग एक्सटसी उसका वर्णन हुआ है। तो इधर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये जो हास्य रस जो है ये दो परिस्थितियों में होता है। एक परिस्थिति जब केवल एक ही उम्र के लोग बैठे हों, जैसे एक ही उम्र के लड़के लोग बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं तो हंसते रहते हैं कि नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के जो बच्चे बैठे वो भी जोक करके हंसते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वृद्ध लोग रहते हैं और युवक बच्चे रहते, युवक रहते, उन दोनों के बीच में भी हास्य रस होता है। तो ये दो प्रकार परिस्थितियों में हास्य रस होता है। तो इधर श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि रूप गोस्वामी लिस्ट दोज एक्सपीरियंस हास्य रस। एक्सपर्ट स्कॉलर से दैट लाफिंग इज जनरली फाउंड अमंग यंगस्टर्स आर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। वृद्ध लोग और बच्चे, बच्चे मतलब योग भी समझ लीजिए, उन दोनों का मिश्रण से कभी कभी हास्य रस होता है। कभी वृद्ध लोग कुछ बोलते हैं और सब बच्चे क्या करते हैं उसको देख के हंसते, चुपचाप हंसते हैं, तो सामने हंसना बहुत डेंजरस होता है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी बच्चे अपने आप एक दूसरे को मजाक करते और हंसते हैं। तो ये दो प्रकार की कृष्ण की लीलाओं में हास्य रस का वर्णन होता है। कभी कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ कभी ऐसा कुछ बातचीत करते और हंसते हैं, और कभी कभी वो जटिला कुटिला उनकी व्यवहार को देख के, गोप लोग और गोपियां कृष्ण वो सब उनको वृद्ध लोगों को देख के हंसते हैं। अभी इसलिए कहा गया है ये जो उसको आश्रय आलंबन कहा गया है। जब तक भगवान श्री कृष्ण और ये जो उनके जो पार्षद है या गोपियां हो, गोप हो, वृद्ध हो, वो जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता है, तब तक ये हास्य रस जो है उसका आस्वादन नहीं हो पाता है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का स्मरण करने मात्र से कभी कभी अद्भुत रस का वर्णन हो सकता है, लेकिन हास्य रस ऐसा चीज है वो कभी अकेले नहीं होता है, लोगों के साथ में होता है। मान लो कि एक ही व्यक्ति बैठा है, बैठ के अपने यहां हंस रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे उसको, तो पागल बोलेंगे। लेकिन चार पांच लोगों के बीच में हंसता है तो बोलेंगे वो बड़ा आनंद ले रहा है। तो इसलिए कहा गया ये हास्य रस की विशेषता ये है कि वो कृष्ण को भी हास्यरस का आस्वादन करना है तो अकेले नहीं हो पाता है, तो वो साथ में होगा तभी हो पाएगा। इसलिए खास करके ये जो दोस्तों के पास बैठ के जाना, लोगों के मन में ऐसा क्यों रहता है, थोड़ा हंसी मजाक होगा, अरे घर में बैठे बैठे थक लोग पक गए बाहर जाके क्यों क्यों जाना चाहते, थोड़ा हंसी मजाक हो, है कि नहीं। तो ये भी कृष्ण के अंदर भी इस प्रकार की बात रहता है, इसलिए इसको आश्रय आलंबन कहा गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक गंभीर व्यक्ति है समझ लो, वो कभी हंसता नहीं है, कभी हंसता नहीं है, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति है वो पब्लिक पे नहीं हंसता है। जो बहुत गंभीर होता है ना, वो पब्लिक पे कभी नहीं हंसता है, लेकिन बाद में हंसेगा। अभी इधर नंद महाराज गोपों में प्रमुख है, इधर देखा जाए नंद महाराज को इतना हंसी आ रही थी स्मरण करते करते, बाकी लोग तो एकदम गंभीर थे, क्या हो गया, इतना गंभीर विषय है, दो बड़ा वृक्ष गिर गया, कृष्ण के ऊपर नहीं हुआ, कृष्ण बच गए, सब लोग ऐसा सोच रहे, और नंद महाराज जो है अभी सब तो गंभीरता तो दिखाना पड़ेगा, सब जोर जोर से हंसने लगे तो क्या हो जाएगा, लोग सोचेंगे क्या हो गया, पुत्र इतना भयानक स्थिति में और तुम हंस रहे हो। इसलिए गंभीर व्यक्ति का जो हंसी होता है वो चुपचाप होता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाल लिखते हैं कि समटाइम्स कभी कभी वो गंभीर व्यक्ति भी उनके मुख में हंसी दिखाई पड़ता है, हाँ, लेकिन वो जो मन में इसको उसको हंसी को दबा के रखना चाहते हैं, लेकिन कभी वो रुकता नहीं, वो बाहर आ जाता है। अभी ये प्रसंग देखा जाए, इधर नंद महाराज सबके सामने है, अभी पुत्र एक बहुत भयानक स्थिति से बाहर आए, लेकिन इतने दो बड़े वृक्ष नीचे गिरे, हो सकता है कृष्ण ऊपर गिर पड़े, हाँ, घबराना चाहिए, लेकिन नंद महाराज के मन में क्या है, हंसी है। अभी हंसी है तो बाहर तो सब लोग देख रहे हैं नंद महाराज को, इसी हंसी को दबाने के लिए प्रयास किया। इसलिए उस श्लोक में कहा गया है कि प्रहस्त वदनहा, वो मुख में दिखाई पड़ा हंसी, लेकिन अंदर तो था हृदय में, खाली मुख में ही खाली हल्का सा दिखाई पड़ रहा था, क्यों, उनके मन में स्मरण कर रहे थे। ये रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि हास्य रस में एक होता है कि साधारण, जैसे नॉर्मल हर समय होने वाला है, दूसरा है विशेष। तो नंद महाराज की जो सी है अभी जो चल रही है वो विशेष है, स्पेशल। अभी हास्य रस के अंदर विषय आलंबन के विषय में कहा गया है, विषय आलंबन का अर्थ यह है कि कभी कृष्ण विषय होते हैं हास्य का, कभी कभी ग्वाल बाल जो है विषय होते हैं हंसी का। तो नंद महाराज का एक बार ऐसा हुआ, कृष्ण हिमसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेयर्स। तो कृष्ण स्वयं जब सारे जितने भी हंसी होता है हास्य का, जो एक इसमें से बढ़ते सामने श्लोक है बहुत एक बार ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण जो है कृष्ण यशोदा माई के साथ घर में खेल रहे थे, उस समय क्या हुआ, एक दुबला पतला सा एक भिखारी घर में आया, यशोदा माई के घर में, घर में आके उन्होंने सब बहुत भिक्षांदी बहुत भिक्षांदी भिक्षा दो बोल रहे थे। यशोदा माई ने अपने घर खोला, दरवाजा खोला तो कृष्ण देख रहे थे। अभी यशोदा कृष्ण देखते ऐसा देखो, नहीं नहीं इसको अंदर आने मत देना, इसको जल्दी से निकाल दो, नहीं तो क्या करेगा वो, मुझे ये अपनी झोली में डाल के चले जाएगा। अभी ये जो भिखारी है ये कृष्ण की बात सुन के वो तुरंत वो हंसने लगे। वाइल द मेंडिकेंट वाज स्टैंडिंग इन द डोर ट्राइड टू हाइड हिज स्माइलिंग फेस बट ही कुड नॉट डू सो, इमीडिएटली एक्सप्रेस हिज स्माइलिंग। इन दिस इंस्टेंस कृष्णा हिमसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफिंग अफेयर। तो कृष्ण स्वयं जो है वो विषय बने, यानी ये जो भिखारी जो आए थे शुदमय के घर में, उनका हंसी का कारण कौन था, क्या कारण था, कृष्ण स्वयं था, जो स्वयं रूप कृष्ण है वही हास्य का वो एक कारण बने, मजाक के कारण बने। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला भी दिव्य है कि वो स्वयं हास्य का कारण बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं ये मजाक का कारण बन गया, मतलब क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता है अदर्स आर द कॉज ऑफ लाफ्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य लोग जो है वो कारण हो जाते हैं अधिक है। तो कैसे हैं? तो कृष्ण एक बार ग्वाल बालों के साथ बैठे थे। साधु ग्वालबाल ने कहा, हे कृष्ण मुख खोलो, तुम्हारे मुख में मिठाई डालेंगे। तो कृष्ण ने आंख बंद करके मुख खोला तो उसके अंदर एक फूल डाल दिए और बोला कि बहुत सुंदर है, खाओ। तो कृष्ण एकदम उसको आनंद से चबाने लगे, चबाते उनका पूरा मुंह विकार हो गया, क्योंकि कड़वा लगा। तो इसको देख के सब लोग एकदम हंसने लगे, दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग। तो ये जो है रूप गोस्वामी गिव्स टू एग्जांपल्स इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट कृष्णास फ्रेंड्स लाफ व्हेन समवन ट्रिक्स हिम टू ईटिंग बिटर फ्लावर। तो ये दो जो उदाहरण देते हैं जहां कृष्ण जो है वो दूसरों का हंसने का कारण बन जाते हैं। इट इज और दूसरा एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। एक बार नंद महाराज कृष्ण को बहुत गंभीरता से लेके आए। एक ब्राह्मण आए थे उनके घर में। तो ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, ज्योतिष में विशाल विद्वान थे, हस्तरेखा को देखने बड़े विद्वान थे। वैसे तो कृष्ण एकदम बिल्कुल छोटे से हैं। अभी ये ब्राह्मण बड़े विद्वान था, जानता था कौन कृष्ण है, कृष्ण का तत्व जानता था। नंद महाराज ने बहुत घबराते हुए कृष्ण का हाथ दिखाया और बताया कि मेरा बेटा का लंबा उम्र रहेगा ना, समृद्ध रहेगा ना, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तब जैसे नंद महाराज ने ये प्रश्न पूछा तो तुरंत ये जो पामिस्ट है, ये जो अस्त्रेखा देखने वाला है, ज्योतिष है, वो नंद महाराज को हंसने लगे। हंस के बोले नहीं कि क्यों हंस रहे है, तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है और तुम पूछ रहे हो, मेरे मुझे पूछ रहे हो ये लंबा उम्र जिएगा कि नहीं, ये कौन सा है क्या है। यानी जो दूसरा आनंद महाराज या इत्यादि लोग जब हंसी का कारण बनते, यानी भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों का जो व्यवहार के वजह से दूसरों को हंसी उत्पन्न होता है वो भी हास्य रस में आता। जैसे अभी देखा जाए इधर नंद महाराज कि विमोचहा, ये विमोचहा शब्द जो है ये हमारे लिए एक प्रकार का हास्य का कारण है। मुक्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति को मुक्त करना चाहते हो, यह मुक्त किया है, ये एक प्रकार का हमारे लिए हंसी का कारण है। तो ये भी इस प्रकार के जैसे एस्ट्रोलॉजर था, जो कृष्ण के घर में आके नंद महाराज ने कहा जरा मेरा बच्चे को जरा हाथ देखो बराबर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि नहीं बताओ। ये बात सुनके जिस प्रकार वो एस्ट्रोलॉजर ने हंसा था, वो जो ज्योतिष ने हंसा था, उसी प्रकार ये भागवत के ये जो शब्द में हमको देखने को मिलता है। क्या है? नंद महाराज ने कृष्ण को मुक्त किया, इसको देख के हंसी तो आती है क्या नहीं। अब हम सब लोग कृष्ण के पास जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग जाते हैं, हे भगवान मुक्त कर दो हमके, और जो मुक्ति प्रदान करने वाले उनको मुक्त किया, ये हंसी का कारण है। तो असल में भागवत में प्रत्येक शब्द जो है रस से भरा हुआ है। तो इसका आस्वादन करना है तो क्या करना होगा, हमारी भक्ति उत्पन्न करना होगा। जितना हमारी भक्ति है उतना हमारा ये भागवत रस आस्वादन हो सकता है। अभी आगे श्री प्रभुपाद जी अपने भक्ति रसामृतसिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये रूप गोस्वामी कमेंट्री देते हुए कहते हैं कि वन दूसरे प्रसंग में सच लाफिंग एक्सेसिव ऑफ लव कृष्णा और मैटर पर्टेनिंग टू कृष्णा द कॉज ऑफ लाफ्टर इन सच लाफिंग डिवोशनल सर्विस सिम्टम्स ऑफ जुबिलेशन लेजीनेस कंसील्ड फीलिंग एंड सिमिलर अदर सीमिंगली डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स उद्दीपन कहा जाता है। तो इसके विषय में उद्दीपन के विषय में कहा गया है कि देर आर सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इन सच लाफिंग एक्सेसिव ऑफ लव कृष्णा और मैटर पर्टेन टू कृष्णा द कॉज ऑफ लाफ्टर स्पेसिफिकली कृष्णाज बिहेवियर एंड कृष्णाज पेरेंट्स आर उद्दीपन फॉर एक्सेटिक लाफ्टर। उद्दीपन का अर्थ क्या है? उद्दीपन का अर्थ है कि जो व्यक्ति जिसके वजह से वो रस का आस्वादन हुआ उसको उद्दीपन कहा गया है, और जो जिसके विषय में चर्चा हो रही है उसको विषय कहा गया है। तो विषय आलंबना उद्दीपना, उसका वर्णन करने के बाद आगे अनुभव। तो अलग अलग प्रकार के अनुभव, अनुभव का अर्थ है कि जो हमारे हृदय में जो भाव को अनुभव हो रहा है वो शरीर में जो विकार प्रकट होते हैं उसको अनुभव कहा गया है। जैसे अगर कोई हंसता है समझ लीजिए, हंसी में कभी कभी वो जो होंठ है बड़े हो जाते हैं, कभी कभी वो हंसी में आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी उनका नाक बड़ा हो जाता है, किसी का हंसते हंसते नाक बड़ा हो जाता है कि नहीं, ये सबको उदीक बन कहा जाता है। तो रूप गोस्वामी पाद ये इन सबको अनुभव कहा जाता है, ये सबको वर्णन करते हैं। बाद में कभी कभी ये व्यभिचारी भाव आते हैं जिसके अंदर आलसीपन हो जाता है। मान लो हंसते हंसते कोई व्यक्ति बोलता है कि बस अभी हो गया, अभी अब और हंसता है कि नहीं, ये इस प्रकार के अनुभव भी होते हैं। आगे कुछ होते हैं हास्य रति जो है वो स्थाई भाव है। किसमें? हास्य रस में। हास्य रस में हास्य रति जो है स्थाई भाव है। हास्य रति सबके जो भक्त खास करके साख्य में ज्यादा पाया जाता है, वात्सल्य में इतना ज्यादा पाया नहीं जाता, लेकिन साख्य में ज्यादा पाया जाता है कि वो स्थाई रूप में रह जाता है। जैसे दोस्तों से मिला जाता मिलते हैं तो क्या करते हैं, अभी आप इस जगत में भी देख सकते हैं, जब एक ही उम्र के जब बच्चे मिलते हैं तो क्या होता है, हंसते रहते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये स्वभाव है। तो ये जो साख्य रस के अंतर्गत ये जो हास्य रस है वो स्थाई भाव माना जाता है। और इधर है बहुत महत्वपूर्ण विषय जो रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि छह स्तर के हास्य का जो तीव्रता का वर्णन करते हैं, इंटेंसिटीज ऑफ एक्सेसिव लाफ्टर। तो ये छह प्रकार का जो बातें क्या है उसका वर्णन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्तिरस सामृत सिंधु में। सबसे पहला है स्मिता, दूसरा है हसिता, तीसरा है विहसिता, चौथा है अवहसिता, और पांचवा है अपहसिता, और छठा है अतिहसिता। और इन छह चीजों का लक्षणों का वर्णन करते हैं। अभी देखिए ये केवल जो हंसना जो है उसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, सच ए बिग थिंग। अभी आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो है ये है वैज्ञानिक है, बहुत सारी चीजें रिसर्च करके कुछ भी नतीजे पे नहीं आते, लेकिन ये जो हमारा शास्त्रों में चाहे वो आध्यात्मिक स्तर के जो बातें हैं या भौतिक रस है उन सब का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। उसका पूरा पूरा ये पूरा टेक्नोलॉजी एक विज्ञान है। हमारा जो एक दूसरे के बीच में जो भावनाओं का आदान प्रदान जो है ये भी एक विज्ञान है, ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाता है, इट्स अ साइंस। तो ये जो हास्य रस का विज्ञान को रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते कहते हैं सिक्स डिग्रीज, उसमें भी दो कैटेगरी है। व्हेन वन इज स्माइलिंग, इसमें भी दो भाग है। द मेजर डिविजन इंक्लूड्स स्मिता हसिता एंड विहसिता, एंड द माइनर डिविजन इंक्लूड्स अवहसिता अपहसिता एंड अतिहसिता। तो उसमें दो भाग है, एक है मुख्य दूसरा है गौण। जो पहले तीन चीजें हैं क्या है वो स्मिता हसिता और विहसिता जो है वो तीन चीजें वो मुख्य हैं, और बाकी जो तीन चीजें हैं अवहसिता अपहसिता और अतिहसिता ये जो है वो मुख्य माना वो गौण माना गया है या सेकेंडरी माना गया है। अभी ये छह प्रकार के जो हंसी हैं उसका वर्णन इधर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। सबसे पहला है दांत को दिखाए बिना जो हंसता है ना उसको स्मिता कहा जाता है। अभी वह दांत को दिखा के हंस रहा है। जो दांत को दिखाए बिना हंसते हैं ये स्मिता कहा जाती। इधर नंद महाराज का स्मिता है, भले ही प्र हासा लिखा हुआ है लेकिन ये बात समझना चाहिए कि ये स्मिता है। कि नंद महाराज अगर उस समय दांत दिखा के हंसते तो लोग क्या सोचेंगे, आपका पुत्र अभी भी बहुत भयानक घटना से घटना है और आप हंस रहे हो। वो स्मिता ऐसी चीज है, अंदर तो बहुत हंसी है लेकिन बाहर दिखाने में थोड़ा शर्मा लगा। जो बहुत शर्माता है ना वो जोर जोर से नहीं हंसता नहीं है, वो केवल वो खाली मुस्कुराता है, उसको स्मिता कहा गया है। जिसमें दांत दिखता नहीं है उसको स्मिता कहा गया है। और दूसरी बात क्या है उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। व्हेन वंस कृष्णा वाज स्टीलिंग योगर्ट, एक बार ऐसा हुआ जराती करके एक यूपी है तो वो सो रही थी, वैसे तो लेटी हुई थी और जैसे सोने के समय जिस सांस लेते तो थोड़ा सा कराटे आते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को कराटे सोने से पहले भी आता है या जागते हुए भी कराटे मारते हैं। हाँ ये होता है, जागते हुए कराटे मारते हैं। हमने सुना सोते सोते कराटा मारा जाता है, लेकिन जाते अभी कृष्ण ने सोचा सब बालों को देखो अभी ये सो रही है, चलो हम जाके अभी मक्खन चोरी करते। अभी इधर ये जराती जो है वो सोई नहीं है, कृष्ण की सारे बातें सुन रही है, अभी जोर से तो हंस नहीं सकती, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जदीना। उनको अच्छा लगता है, गोपियों को अच्छा लगता था कृष्ण आके हमारे घर में चोरी करे। अभी इधर जो है वो सोच रही है कि सब सोच रहे हैं कि वो सो रही है, लेकिन उनको मालूम है कृष्ण इस प्रकार कह रहा है, वो जागी हुई है। अभी ये देख के उनके मन में हंसी आया, लेकिन अगर हंसी आकर हंसने लगी जोर से हंसने लगी तो क्या होगा, तो कृष्ण भाग जाएंगे कृष्ण, उसकी वजह से वो जैसे आनंद महाराज का दूसरे क्या सोचेंगे। ये भावना की वजह से दांत को भी नहीं दिखाए, मान लो अंधेरे रात में अगर जराती अगर दांत को दिखा के हंसती तो कृष्ण देख लेंगे सफेद दांत को, इसे दांत को छुपा के हंसने लगी। ये जो है स्मिता का एक एक दूसरा है एट द टाइम कृष्णा बिकेम वेरी मच अफ्रेड। हाँ ऐसा हुआ, लेकिन क्या हुआ, जैसे जराती इस प्रकार हंसने का रोक रही थी, लेकिन जैसे कृष्ण को मालूम पड़ा ये तुरंत उनके पीछे पीछे भागने लगी, और कृष्ण भयभीत होकर भाग रहे थे। तो उसको देख के क्या हुआ, जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण थे वो कृष्ण की लीलाओं को देख रहे थे, वो सब देवलोक से सब लोग हंसने लगे। लेकिन बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, बड़े गंभीर होते हैं, और ये लोग जोर जोर से हंसते रहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या हो गया इन लोगों को, ये तो गंभीर वाले, ये तो उपनिषद बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, एक ज्ञान में प्रवृत्त रहता है, वो ज्यादा हंसता नहीं है। लेकिन उनको भी हंसी आई, इसलिए कहा जाता है दिस इज नोन एज स्मिता, दिस स्माइलिंग इज कॉल्ड स्मिता, द ग्रेट सेज हेवनली प्लैनेट्स बिगन टू स्माइल। बाद में दूसरा है दूसरा हसीता स्मिता जो स्मिता के बाद हसीता। अभी हम लोग बोलते हैं ये हंस रहे हैं, ये इसको कहा जाता है जब दांत दिखा के जो हंसना होता है ना उसको हसीता कहा जाता है। एक बार अभिमन्यु जो राधा रानी का तथाकथित पति है वो क्या हुआ, एट द टाइम ही कुड नॉट सी कृष्ण, वो अभिमन्यु आए घर में, तो उस समय क्या हुआ था, कृष्ण उनके घर में थे, तो कृष्ण के घर में थे और कृष्ण ने देखा अभिमन्यु आ रहा है, और कृष्ण ने क्या किया, अभिमन्यु का रूप धारण किया और जाके तुरंत ने कहा चिटिला के पास गया, जाकर देखो देखो कौन आया, देखो कृष्ण अभिमन्यु का रूप धारण करके आ रहा है, उसको संभालो। और चिटिला ने कहा ऐसा है क्या, सारे गोपियां भी थी सब लोग थे, जाके अभिमन्यु अच्छा अच्छा तुम कृष्ण हो, ले धनाधन मारने लगी उनको सबको, अभिमन्यु को मारने लगी। अभिमन्यु जोर से चिल्लाई, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अभिमन्यु इमीडिएटली बिलीव दैट कृष्ण वाज हर ओन सन, दैट कृष्ण वाज हर ओन सन, एंड दस बिगेम वेरी एंग्री एज द रियल सन वाज कमिंग होम, शी बिगेन टू ड्राइव अवर रियल सन, ही वाज क्राइंग मदर मदर ओ मुझे छोड़ो। उस समय सारे जो गोपियां थी जो इनको बात मालूम था वो सब लोग हंसने लगे, खाली दांत दिखाई पड़ रहा, जोर जोर से हंसे होते तो खासकर कहा जाता है ये जो पब्लिक में खास करके स्त्रियों को जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है। उस समय गोपियां जो है वैदिक संस्कृति पालन करती थी, अगर उनको जोर जोर से हंसना है तो जो स्त्रियों के बीच में बंद कमरे में करना चाहिए, लेकिन जब पब्लिक में आते हैं भले भी हंसी आए दांत थोड़ा सा दिखा के जरूर हंस सकते हैं, लेकिन जोर जोर से हंसना जो है वो स्त्रियों को वर्जित है, ऐसा एक वैदिक सभ्यता है। तो ये सब गोपियां वैदिक सभ्यता, उनको इतना जोर जोर से हंसी आ रहा था लेकिन फिर भी समाज का दबाव था उससे वो हंसी था, दांत दिखा के हंस रहे, थोड़ा सा दांत दिखाई पड़ रहा था, थोड़ी सी मात्र। जब हंसने के समय जब दांत खुले आम से दिखाई पड़ रहा है, पूरे दांत दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा दांत नहीं वो पूरा, जिसको गम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसके ऊपर दांत के ऊपर रहता है, जो मसूड़ियों के साथ जो दांत दिखाई पड़ता है ना वो थोड़ा अलग है। एक बार ऐसा हुआ, वन डे व्हेन कृष्णा वाज एंगेज्ड इन स्टीलिंग बटर एंड योगर्ट इन हाउस ऑफ जेटला, वो जिटला के घर में जाके वो चोरी कर रहे थे, तो आई नो द ओल्ड लेडी इज नाउ स्लीपिंग, ओल्ड लेडी केम डिस्टर्ब, विदाउट डिस्टर्बेंस विल गो, सो शी कुड सर्टनली शी कुड नॉट कंटेन स्माइलिंग, टीथ वर इमीडिएटली बिकेम विजिबल, दिस इंस्टेंस ऑफ विंसिता। तो एक बार जटिला के घर में भी जब गए चोरी करने के लिए, उस समय एक वृद्ध स्त्री थी, ये देख के वो जोर जोर से हंसने लगी, मतलब पूरा दांत दिखा के हंसने लगी। तो वैसे वंस कृष्णा इन द मॉर्निंग व्हेन कृष्णा रिटर्न होम परफॉर्मिंग रस डांस, तो एक बार रासलीला के बाद कृष्ण घर वापस आए, जब फिर वापस आए तो यशोदा कृष्ण को देख के बोलने लगे, हे क्या हो गया तुमको, ये सब तुम्हारे चेहरे के ऊपर ऐसा ऐसा पूरा ये सब अलग अलग प्रकार के जो पाउडर है वो सब होता है ना, वो सियाँ लगाती हैं कॉस्मेटिक, वो सब कहाँ से आ गया है तुमको, हाँ ये कौन सा वस्त्र पहने है, बलराम तो नीले वस्त्र पहनते, तुम नीला वस्त्र कहाँ से पहन के आया है, ऐसा यशोदा कहने लगा। बिट्टू सी घबरा रहे, अभी उनको पता नहीं लगना चाहिए यशोदा को मैं कहाँ से आया हूँ, तो इसको आवाहसिता कहा जाता है, कुछ गोपियां जानती थी अभी कहाँ से आ रहा है, और इसको देख के एकदम जोर जोर से हंसने लगी, जहां इसको आवाहसिता कहा जाता है, जहां आंख जो है एकदम बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, क्योंकि कभी जब कोई मतलब कोई चीज है छुपा के रखना है तब क्या करता है, आंख थोड़ा बंद कर देते, हमको हमको मुझ पूछना है, जब आंख जो छोटा हो जाते हैं और दांत दिखाई पड़ते हैं, इसको जो है आवाहसिता कहा जाता है। तो उसके बाद जब आंखों में आंसू आ जाता है, साथ साथ में जो भुजाएं हैं वो भी हिलने लग जाते हैं हंसने की वजह से, होता है क्योंकि वजह से उसको क्या कहा जाता है, अपहसिता कहा जाता है। एक बार कृष्ण जो है, व्हेन कृष्णा वाज डांसिंग इन रेस्पॉन्स टू सिंगिंग ऑफ ओल्ड मेट्स ऑफ जराती, नारद वाज एस्टॉनिश्ड, हे कृष्ण ये जराती जो है गा रही थी और कृष्ण बोल रहे नाचो, और कृष्ण जैसे जराती बोल रहे थे ऐसे नाच रहे थे, अभी नारद जी इसको देख के हंस रहे थे। आपने कभी कभी कोई फिजुलने साधारण महाराज का प्रवचन सुना है, जब कोई जोक करते हैं कोई हंसते है वैसे हंसते ये इसको बोला जाता है आपा सीधा, कभी उनका वीडियो देखिएगा वो उनका क्या, तो वो तो आता हाथ समय पता नहीं सेवेंथ ग्रेड होगा उसका, उनका रूप गोस्वामी बात को नया लिखना पड़ेगा। जब ये हंसी इतना हद तक पहुंच जाता है, व्हेन ए स्माइलिंग पर्सन क्लैप्स हिज हैंड एंड लिप्स इन एयर, जब वो ताली बजाते हुए वो एकदम कूदना शुरू करता है हंसते हंसते, वो जो है वो अति हसीता कहा जाता है। एज सच द किंग ऑफ मंकीज वाई लुक आवर सेलेक्टेड, हाँ एक बार ऐसा हुआ आप जरा दी एक बार आए, माई डियर गुड वुमन द स्किन ऑफ योर फेस इज नाउ स्लैकेंड, कृष्ण आके जरादी को बोले लगे, तो वृद्ध हो चुकी है वो, तुम्हारे ना जो चमड़ी है वो ढीला पड़ गया है और तुम्हारा जो मुख है वो भी थोड़ा वृद्ध हो चुका है, ऐसा लगता है कि बली मुखा जो है हैज सेलेक्टेड यू एज अ वर्दी वाइफ, एक बंदर का जिसका नाम था बली मुखा। तो कृष्ण ने कहा जरादी को, ऐसा लगता है कि बलिमुख जो है आपको एक बिल्कुल योग्य पत्नी ढूंढ के रखा है, ऐसा आपसे विवाह करना चाहता है। तो जरा से बोलते कृष्ण को, अच्छा मुझे बलिमुख का वो नहीं मालूम कौन है, लेकिन अगर विवाह करूंगी तो तुमसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मैं तुमसे ही करने वाली हूं। यानी कृष्ण जराती को ऊपर मजाक करने लगे और जराती ऐसे शब्दों के साथ कृष्ण को मजाक उड़ाने लगी, और जैसे ये बातें सुने तो तुरंत सब लोग ऐसा जितने गोपियां सब लोग कूद कूद के ताली बजाते हुए वो हंसने लगे, इसको अपहसिता अतिहसिता कहा जाता है। तो अनेकों अनेकों प्रकार के जो हास्य रस का विश्लेषण होता है, खास करके हम इधर इस श्लोक में देखते हैं, नंद महाराज ने हास्य रस का आस्वादन किया, जहां गंभीर थे और वो हंसी को बाहर व्यक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको स्मिता कहा जाता है, दांत दिखाए बिना नंद महाराज हंस रहे हैं। लेकिन हमको ये जो नंद महाराज की ये कार्य को देख के जो सुनते हैं अन्य भक्त जो हैं, जो मुक्ति प्रदान करने वालों को मुक्ति प्रदान किया या मुक्त किया, इसको देख के जो आस्वादन होता है, इसमें नंद महाराज जो है वो विषय विषय आलावन होते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो भक्तों को जब भी समय मिले भागवत को और अच्छी तरह से आस्वादन करने के लिए भक्ति सामर सिंधु का जो पहला भाग है जिसके अंदर साधन भक्ति के नियम को वर्णन किया गया उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए और भक्ति का उत्पन्न करना चाहिए हृदय में, जिसके द्वारा हम इन रसों का आस्वादन अच्छी तरह से कर सकते हैं। हरे कृष्ण संतराश्रमन भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।